Suci. सम्यक दर्शन के 25 दोषों का विवरण चल रहा है। पहला स्टेप उसका पूर्ण हुआ। दूसरे स्टेप में पहुंच रहे हैं। 8 मद सम्यक दर्शन के दूषक होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव मद नहीं करता। मद यानी अहंकार, मद यानी घमंड। सम्यक जीव धर्म को समझता है। स्व क्या है, पर क्या है, इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानकारी रखता है। पर वस्तुओं में उसकी उसका ममत्व भाव नहीं रहता। पर वस्तु को पर समझता है, निज आत्मा को स्व समझता है। स्व को छोड़कर बाकी सब पर ही हैं, तो पर के निमित्त से जो उत्पन्न होता है मद, अहंकार या किसी वस्तु को लेकर के घमंड होता है, वह अज्ञानता है। अज्ञानता मेरे में शोभा नहीं देती। इस प्रकार से पर के वस्तु को अपना मानकर उसको लेकर के घमंड करना, ये मेरी अज्ञानता है। इस प्रकार वह जानकारी रखता है, समझता है। तो वो मद कौन कौन से नहीं करता सम्यक दृष्टि जीव, यह बात बताई जा रही है। पहला है ज्ञान मद, दूसरा पूजा मद, तीसरा है कुल मद, चौथा जाति मद, पांचवा बल मद, छठा रुद्धि मद, सातवां तप मद और आठवां रूप मद। ये 8 मद कहलाते हैं जो सम्यक दृष्टि के भीतर ये नहीं हो सकते। ज्ञान मद, ज्ञान किसका है? आत्मा का है। ज्ञान आत्मा का है, आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है। लेकिन ज्ञान की 8 पर्याय हैं। कितनी पर्याय? 8 पर्याय। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, फिर ये 3 हो गए। 5 सुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये ज्ञान के ही 8 पर्याय हैं। आत्मा के पास जो ज्ञान होता है वह जानने और देखने का काम करता है। ज्ञान शक्ति के माध्यम से हम जानते हैं और देखते हैं, जानते हैं देखते हैं। निरंतर चल रहा है कि नहीं चल रहा? निरंतर चल रहा है। जानना और देखना जब होता है उस वक्त इस जानने देखने की जो कैपेसिटी है, यह कैपेसिटी की अवस्थाएं बनती हैं। उन अवस्थाओं को पर्याय कहते हैं। कोई कम जानता है, कोई ज्यादा जानता है, कोई उससे ज्यादा, कोई उससे ज्यादा, ये केवल 8 पर्याय बनती हैं। जानना और देखना जब सही सही नहीं होता और विपरीत दिशा में होता है, कुछ है और कुछ समझता है, वस्तु स्वरूप कुछ है और जानता कुछ है, ऐसा यदि हो रहा है तो उस समय 3 में से कोई 1 पर्याय होती है कुमति, कुश्रुत को अवधि कुमति ज्ञान यह क्या करता है अवग्रह इहा अवाय धारणा चार प्रकार से चल पड़ता है। अवग्रह वस्तु को ग्रहण करता है, अवग्रह हुआ। ज्ञान वस्तु को ग्रहण कर लेता है, अवग्रह। इहा ग्रहण तो किया लेकिन पक्का दिखाई नहीं दिया, जानने में नहीं आया, दिखा और चला गया, उसका ज्ञान पूरी तरह से नहीं हो पाया, पर इतना है कि सामान्य नॉलेज उसको हो चुका है, ये अवग्रह मति ज्ञान कहलाता है। इहा इहा यानी इच्छा पूर्वक, पुनः इच्छा होती है कि वो क्या है, प्रश्न उत्पन्न, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो ये भी मति ज्ञान ही है, अवग्रह भी मति ज्ञान है, यानी सामान्य नॉलेज जो हुआ प्रथम क्षण में वो भी मति ज्ञान, और तत्पश्चात जो उसको देखने की जिज्ञासा हो गई वो भी मति ज्ञान ही है। फिर इच्छा पूर्वक उस वस्तु को जा करके वहां देखा, हाँ ये वस्तु है, ये वस्तु का निर्णय हुआ, निर्णयात्मक ज्ञान को अवाय ज्ञान कहते हैं। अब अवाय के पश्चात निर्णय तो हो गया वस्तु यही है, जो ऊपर से गिरा मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया था इसलिए जानने की जिज्ञासा हो गई और जानने ही तो मैं उसके पास आया, वो यहाँ पर पतंग गिरा है, हमने सोचा था अपना नैपकिन गिर गया था नीचे, नैपकिन नहीं गिरा था, हवा से उड़ करके किसी का पतंग आया, किसी बालक का पतंग आ करके गिर गया, ये निर्णय तो हो गया। इस निर्णयात्मक ज्ञान को क्या कहते हैं, अवाय, निर्णय होना अवाय। अब धारणावती ज्ञान देखो कैसा है, ये चौथा स्टेप है उसका, धारणा यानी जो पतंग गिरा था उसको पतंग को पतंग ही गिराता, ऐसा कर करके हमने स्मरण में रखा, स्मृति में रखा, और इस स्मृति में रखा हुआ ज्ञान भूल जाता है का तत्काल, अभी देखा निर्णय कर लिया स्मरण में भी रखा, तत्काल भूल जाता है क्या, नहीं, लेकिन कालांतर में भूल सकता है। एक साल बाद पूछा, उस दिन जो आप वहाँ खड़े थे घर के सामने, आपके सामने जो कुछ वस्तु गिर गई थी वो क्या है, ये भूल भी सकता है और स्मरण में भी रह सकता है। अगर भूल गए तो अवग्रह इहा अवाय हो करके कालांतर में वो विस्मृत हो गया, ऐसा कहा जाता है। अगर याद आ गया तो धारणा मति ज्ञान आपकी मजबूत है, इसलिए याद आ चुका और इसलिए आपने बताया, ऐसा बताया जाता है। तो एक साल के बाद भी आप यदि नहीं भूले हैं, वो नैपकिन नहीं था, पतंग ही था, उस दिन देखा था हमने, तो ये कौन सा ज्ञान हुआ, धारणा मति ज्ञान। इस प्रकार से मति ज्ञान जो है काम करता है जानने का और देखने का, लेकिन उसमें से जो अभिप्राय निकालना चाहिए वो ठीक से निकालता नहीं है। किसी ने पतंग गिरा दिया था तो उस संबंध में अच्छा सोचेगा नहीं वो, आज पतंग गिराया उसने, कल के दिन और कुछ गिरा देगा, हमारे ऊपर पत्थर गिरा देगा, वो झगड़ने के लिए तैयार होता है। कौन सा ज्ञान, कुमति ज्ञान। कुमति ज्ञान जब होता है तो उसमें भी अवग्रह इहा अवाय धारणा सब रूप होता है, परंतु वस्तु स्वरूप का ठीक ठीक विचार न करते हुए विपरीत विचार जो ज्ञान करता है उसका नाम कुमति ज्ञान। यह प्रथम गुण स्थान में हुआ करता है, प्रथम गुण स्थान में रहने वाला ज्ञान कुमति ज्ञान है। उस ज्ञान को तीर्थंकर भगवंतों ने कैसा ज्ञान कहा? उन्मत्त ज्ञान। जिस प्रकार शराब पीने के उपरांत व्यक्ति की बुद्धि उन्मत्त हो जाती है और जैसे जिसको जानना चाहिए वो जानने में फर्क आ जाता है, उसी प्रकार इस मति ज्ञान में पहले गुणस्थान में फर्क रहता है और चौथे गुणस्थान में आ जाए तो वो उन्मत्तता कम हो जाती है, वो सम्यक ज्ञान के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। सम्यक दर्शन के साथ हमारा ज्ञान उन्मत्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्मार्ग पर नहीं चलता, सन्मार्ग पर चलता है। उन्मार्ग पर नहीं चलता, सन्मार्ग पर चलता है, इसलिए सन्मार्ग पर चलने वाला ज्ञान उन्मत्त नहीं होता। किंतु दुर्मार्ग को ही अच्छा समझने वाला ज्ञान उन्मत्त बतलाया जाता है, उन्मत्त कहा जाता है। जैसे ये सम्यक दर्शन है, इसमें आत्मा का हित है, ये मिथ्या दर्शन है, इसमें आत्मा का हानि है। समझा तो दिया? हाँ, वो तो ठीक, पहले पांच सुन से हम करते आए, ये उन्मत्त ज्ञान कहलाता है। उन्मत्त ज्ञान, नशा चढ़ गया है पहले पांच सुन का, वो नशा उतर नहीं रहा है। जिस दिन नशा उतरेगा उस दिन चौथा गुणस्थान होगा और जब तक नशा नहीं उतरेगा तब तक पहले गुणस्थान रहेगा, इस प्रकार कहा है। अब ये है सवाल है, आठ मदों का हम व्याख्यान समझ रहे हैं। सबसे प्रथम वाला मद कौन सा है? ज्ञान मद। ज्ञान मद है, ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। वो किस रूप में रहता है? कुज्ञान के रूप में भी रहता है और सुज्ञान के रूप में भी काम कर सकता है। अपना ज्ञान दोनों तरह से काम कर सकता है। जब तक कुज्ञान के रूप में काम करेगा पहले गुणस्थान में रहेगा या दूसरे में रहेगा या तीसरे में रहेगा, चौथे में आएगा तो कुज्ञान नहीं कहलाएगा, सुज्ञान कहलाएगा। तो सुज्ञान ज्ञान मद नहीं करता, होश में है वो, उन्मत्त नहीं है, मदोन्मत्तता उसमें नहीं, नशा नहीं है उसमें। नशा जिस ज्ञान में से नशा उतर चुका है वो सम्यक ज्ञान, सुज्ञान, कुछ भी कहो उसको। और जिसका नशा नहीं उतरा है वो उन्मत्त ज्ञान, कुज्ञान, इस प्रकार से कहा जाता है। तो ज्ञान मद करने वाला ज्ञान कौन सा? कुज्ञान। ज्ञान मद करने वाला ज्ञान कौन सा? कुज्ञान। कुज्ञान ही ज्ञान मद कर सकता है। कैसे करता है देखो, ज्ञान मद, मैं बहुत समझदार हूं मुझे मत समझाओ, हालांकि जानता कुछ नहीं है, जानता कुछ नहीं है, मैं बहुत समझदार हूं मुझे समझाने के लिए मत आओ। हाँ, अभी तो तुम जूनियर हो, मैं बहुत साल से यहीं रहता हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, तुम मत समझाओ, ऐसा कह करके अपनी बुद्धि की, बुद्धि का मद करता। मैं सब में बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, इस प्रकार अपने ही ज्ञान को लेकर के। पर वस्तु तो है नहीं, ये सो वस्तु है ज्ञान। अपने ही सो वस्तु के ज्ञान को, बुद्धि के चातुर्य को लेकर के यदि घमंड आ जाता है तो उसको कहते हैं उन्मत्त ज्ञान, कुज्ञान। ये उन्मत्त ज्ञान कुज्ञान ही घमंड करता है। ये अगर वही ज्ञान उन्मत्तता को छोड़कर सम्यक ज्ञान बन जाए, घमंड कर ही नहीं सकता, क्यों नहीं करेगा? तो क्योंकि उसमें विवेक पैदा होता है, विवेक पैदा होता है और वो सोचने लगता है, चिंतन करने, चिंतन करने की शैली बदल जाती है, सोचने की शैली बदल जाती है। कैसा सोचने लगता है? बुद्धि का घमंड क्यों करना, बुद्धि आती भी है और जाती भी है, और बुद्धि मेरे पास है कितनी? केवल ज्ञानी के पास अपार बुद्धि है, केवल ज्ञान है, और इतना बड़ा केवल ज्ञान होने के बाद भी मैं केवल ज्ञानी हूं ऐसा वो नहीं कहते, और हमारे पास उनमें से थोड़ा सा भी परमाणु के बराबर भी नहीं है और उस पर घमंड कर रहे हैं। ये चिंतन शैली सम्यक ज्ञानी के पास आती है, सोच बदलता है, विनय आती, सम्यक ज्ञान विनयपूर्वक ही होता है, विनयपूर्ण ही होता है, विनयपूर्ण ही होता है सम्यक ज्ञान। मिथ्या ज्ञान में विनय नहीं रहती, वो अपने आप को कुछ समझता है, मैं बहुत कुछ हूं, थोड़ा भी पढ़ा लिखा हो गया तो अकड़ के चलता है, बहुत बुद्धिमान हूं मैं तो अकड़ के चलता है, थोड़ा सा भी धन आ गया अकड़ के चलता है, धन गया तो ऐसे नीचे सिर करके चलता है, धन आया तो ऊपर नीचे सिर होता ही नहीं, बाजार में टाइट होके चलता है। अच्छा वस्त्र पहन लिया तो बढ़िया चलता है, वस्त्र नहीं पहना है तो चुपचाप चलता है। ये देखो तो मिथ्यात्व के लक्षण पहचानो, किसको कहते हैं मिथ्यात्व? ये कुज्ञान ही तो मिथ्यात्व है, ज्ञान का विपरीत सोच, ज्ञान का विपरीत सोच यही मिथ्या ज्ञान है। ये मिथ्या ज्ञान आत्मा के लिए हानिकारक है, जब यह विपरीत रूप से विचार करता, विपरीत सोचता है, कुछ भी नहीं है अपन और बहुत कुछ समझ लेता है, तो उसमें अशुभ कर्मों का बंध होता है। कितने कर्मों का बंध होता है? तो 41 कर्मों का बंध होता है ऐसा कहा। 148 में से कितने कर्मों का बंध कर सकता है? गुणस्थान अपेक्षा कथन है ये, 41 कर्मों का बंध वह करता है और अपनी बुद्धि को ठीक कर लेगा और इस 8 मदों से दूर हो जाएगा तो 41 कर्मों का बंध करेगा ही नहीं। तो 148 में से 41 गए, कितने रह गए? अब 107 का ही बंद करेगा। बुद्धि ठिकाने पर आते ही 41 पाप कर्म नहीं बंधेंगे। उसी पुस्तक में बताया है, बाद में देख लेना, मोहिनी कर्म ऐसा कर करके बंद प्रत्यय, हाँ 15वां पाठ है वो, यहाँ देख लो पेज नंबर 40। पांचवा प्रश्न, मिथ्यात्व की प्रधानता से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है और वे कौन कौन सी हैं? उत्तर दिया है, मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का बंध होता है, वे निम्न प्रकार हैं। 16 ये तो मिथ्यात्व के प्रधानता से, यानी हमारा ज्ञान जब कुमति ज्ञान रहेगा, कुश्रुत ज्ञान रहेगा, यही तो दोनों सोचते रहते, कुश्रुत ज्ञान विचार करता है और कुमति ज्ञान अवग्रह आवाय धारणा तक जाता है, स्मृति तक जाता है। स्मृति तक जाने के बाद उस स्मृति में रहने वाले विषय को विचार करता है श्रुत ज्ञान। श्रुत ज्ञान जब विचार करने लगता है तो वह विचारक श्रुत ज्ञान गड़बड़ करता है। मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है तो स्मरण शक्ति का भी गर्व करता है, याददाश्त बहुत अच्छी है, मुझे बहुत जल्दी याद होता है, कंपटीशन चलता है ना विद्यार्थियों का, और जिसको बहुत जल्दी याद होता है तो मुझे तो हो गया कहता है, मुझे तो हो गया। तो ज्ञान का मद ज्ञान ही करता है और प्रथम गुण स्थान में करता है। ये मत कब हुआ? स्मृति होने के बाद हुआ क्या पहले हुआ? कुछ कार्य सिद्धि हो जाती है तो उसमें वह गड़बड़ करने लगता है श्रुतक ज्ञान, क्योंकि वह भी कुश्रुत है तो कुश्रुत उल्टा विचार करने लगता है, मदपूर्वक उन्मत्तता पूर्वक विचार करने लगता है, इसलिए उसको श्रुतक ज्ञान कहा। ये 16 जो हैं प्रकृतियां ये गिनाई गई हैं। देखो मिथ्यात्व की प्रधानता से 16 प्रकृतियों का बंध होता है। वे निम्न प्रकार हैं, मिथ्यात्व स्वयं एक उसमें है, एक मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी का बंध होता है, और फिर नाम कर्म में से हुंडक संस्थान, हुंडक संस्थान यानी टेढ़ा मेढ़ा शरीर होकर के जन्म लेगा, अंगोपांग ठीक नहीं रहेंगे, हाथ टेढ़ा पांव टेढ़ा अंधा होकर के या मूक होकर के जन्म लेना ये हुंडक संस्थान के कारण से होता है। नपुंसक वेद का बंध होता है, यानी जीव क्या बनेगा? नपुंसक बन के जन्म लेगा, नरक गति का बंध करेगा, नरक गत्यानुपूर्वी का बंध करेगा, नरकायु का बंध करेगा। नरक गत्यानुपूर्वी यानी नरक जाते समय यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए बीच में जो काम करता है कर्म, यानी पूर्व के शरीर को शरीर के आकार को बनाए रखता है और सीधा नरक में जाकर के पहुँचाने में सहयोग देता है। गति नाम कर्म के कारण से तो वह ले जाता, गति नाम कर्म गति कराता है किसकी ओर? जिस गति को हमने बांधा है उस ओर गति कराता है। और अनुपूर्वी क्या करता है? पूर्व में जो शरीर जिस शरीर को छोड़ के आ रहे हैं उस शरीर को बनाए रखता है वो वहां पहुंचने तक, फिर उस शरीर में पहुंचने के बाद वो आकार मिटता है, बस इतना ही काम है उसका। यहाँ से वहां तक पहुंचने हेतु जो आकार बनाए रखना चाहिए उसको बनाए रखता है, इसको कहते हैं गत्यानुपूर्वी। तो नरक गति की ओर जाते समय मनुष्य आकार बना रहेगा और वहां जाने के बाद आकार उसका आत्मा का बदल जाएगा। आकार कैसा रहता है? तो मनुष्य आकार जैसे अपना शरीर है उसी आकार में जाता है वो शरीर छोड़ने के बाद, इसी शरीर के आकार से वहां तक जाने के बाद उसका आकार मिट जाता है। ये इसको गत्यानुपूर्वी कर्म कहते हैं। इसके 4 भेद हैं, नरक गत्यानुपूर्वी, पितृंश गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी। देव गति से आ रहा हो देव गत्यानुपूर्वी, नरक गति से आ रहा हो नरक गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति से जा रहा हो मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पितृंश गति से आ रहा हो तो वहां वहां का जो शरीर का आकार है उस शरीर के आकार से ही आत्मा निकलती है, इसको गत्यानुपूर्वी कर्म कहते हैं। नरक आयु, आयु कर्म है जीने के लिए सहयोग देता है। आप कितने उम्र वाले हैं इसको निश्चित करने वाला कौन? आयु कर्म। असंप्राप्त सर्पाटी का संहनन, ये 7वां है। संहनन समझ में आया है? संहनन क्या है? शरीर की विशिष्ट शक्ति विशेषता को संहनन कहते हैं। शरीर में जो हड्डियां हैं वो किसी के मजबूत हैं, किसी के और मजबूत हैं, किसी के और मजबूत हैं। मजबूतता की ये जो क्वालिटी बनती है वो 6 प्रकार की क्वालिटी है, उसमें सबसे अंतिम क्वालिटी का नाम है असंप्राप्त सर्पाटी का संहनन। जैसे अली आदि हैं, अली यानी लट वगैरह, उनके पास भी संहनन है। ये संहनन नाम कर्म किन किन जीवों में रहता है ये प्रश्न का उत्तर देखिए। द्विइंद्र से लेकर के संगी पंचेन्द्र तक के मनुष्य और त्रिरेंच को संहनन नाम कर्म का उदय होता। देवों को संहनन नहीं, नारकियों को संहनन नहीं। भूभूमि के मनुष्य त्रिरेंच, कर्म भूमि के मनुष्य और त्रिरेंच, इनको संहनन है। और द्विइंद्री, तीनिंद्री, चतुरिंद्री, इन विकलत्रय जीवों को संहनन है। तो ये असंप्राप्त सर्पाटिका संहनन को बांधने वाला कौन? मिथ्या मिथ्या दृष्टि जीव मनुष्य भी बांध सकता है, नारकी भी बांध सकता है, त्रिलिंच भी बांध सकता है, किंतु ये ध्यान में रखना कोई जीव मर करके देव बनने वाला है वो असंप्राप्ता सर्पाटी का सनन यानी किसी भी छह प्रकार के सनन को नहीं बांधेगा, क्योंकि वहां जाकर के सवनन तो पाना नहीं है तो उनका बंद नहीं होगा। उधर से इधर आते समय इसका बंद हो सकता है, इधर से उधर जाते समय इसका बंद नहीं होगा, क्योंकि हड्डी नहीं मिलेगी वहां। यानी देवों के शरीर में और नारकी जीवों के शरीर में हड्डियां होती नहीं है, वो ठोस वैकरिक परमाणुओं से निर्मित शरीर माना जाता है। इसको असम प्राप्त सर्पाटिक कितने नंबर का है, ये छह में से लास्ट नंबर का असम प्राप्त सर्पाटिक का सवनन। एकेंद्री जाति इसको यदि हम बांधते हैं तो पश्चात मरण कर क्या बनते हैं, एकेंद्री जीव बनते हैं। एकेंद्री जीव का मतलब निबोध जीव एकेंद्री है, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, जहां भी जाना हो ये आवश्यक है। एक इंद्री नाम कर्म, तो इंद्री नाम कर्म में से एक इंद्री जाति नाम कर्म को हम बांध करके ही जाते हैं। द्विइंद्री जाति नाम कर्म, द्विइंद्री बनना हो तो द्विइंद्री जाति नाम कर्म को बांधना पड़ेगा। तीन इंद्री जाति नाम कर्म, तीन इंद्री बनकर के चीटी बनकर के जन्म लेना हो तो इस नाम कर्म को बांध करके ही हमको जाना पड़ेगा। चतुरिंद्री जाति नाम कर्म, मासी बनना हो तो चतुरिंद्री जाति नाम कर्म को बांधना पड़ेगा, और मांसी बनना हो तो पंचेंद्री जाति नाम कर्म बांधना पड़ेगा। थोड़ा सा ही अंतर है लेकिन कर्म अलग अलग है। स्थावर, स्थावर ये अलग से नाम कर्म है। स्थावर नाम कर्म के उदय से जीव एक जगह ठहरता है, कोई कष्ट आने पर वहां से भाग करके कष्ट से बच नहीं सकता, अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसको स्थावर नाम कर्म कहते हैं। जैसे पेड़ है, कोई काटने आ रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए कहीं खिसक करके खड़ा हो सकता है कि मुझे मत मारो, लेकिन मनुष्य मारने लग जाए तो बच जाता है, वो भाग जाता है। मक्खी देखो बैठी है, उसको थोड़ा सा धीरे से भी जाओ पकड़ने के लिए उड़ जाती है, इसको इसलिए त्रस कहते हैं। जो अपनी रक्षा, त्रस यानी अपनी रक्षा जो कर सकता है वो त्रस, और जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वही रह जाता है, उसको स्थावर। हाँ, तिष्ठति इति स्थावर संस्कृत भाषा में कहते हैं, जो ठहरता है उसको स्थावर कहते हैं, और जो चलता है उसको त्रस कहते हैं। तो चलने वाले जीव कौन कौन, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, ये चलने वाले जीव कहलाते हैं, इसलिए इनको त्रस कहा जाता है। त्रस यानी कितने आ गए, द्विइंद्री, तीन इंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री, चार प्रकार के आ गए। स्थावर यानी कितने प्रकार के आ गए, पांच प्रकार के आ गए, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये पांच आ गए। ये स्थावर नाम कर्म को बांध लेता है मिथ्या दृष्टि जीव। आतप नाम कर्म, इस नाम कर्म के उदय से जीव सूर्य विमान में जन्म लेता है, विमान में मतलब देव बन करके नहीं, सूर्य विमान पृथ्वी कायिक है, वो एक पृथ्वी कायिक पिंड है, वह मूल में ठंडा है, गर्म नहीं है। लोग कहते हैं, विज्ञान भी कहता है कि वो गर्म होगा, अनुमान ज्ञान है वो, लेकिन वस्तुतः ऐसी बात नहीं है। सूर्य मूल में ठंडा है, अगर गर्म होता तो देवलोक रहेंगे कैसे, वहां पर विमान है, भगवान की चैताल, अकृत्रिम चैताल है, सब कुछ है, वहां पर आवास है सूर्य के ऊपर, ज्योतिष देव, कई देव वहां रहते हैं और इस विमान को खींचते हैं, वो खींचने से ही इसका गमन होता है, इस प्रकार से है। और उसमें अकृत्रिम रत्नमयी प्रतिमा भी, जिन प्रतिमा भी है, मंदिर है, वहां चैतालय है सूर्य विमान में, परंतु ये सूर्य विमान जो है ये किससे बना है, विमान जो बना है वो किसका है, तो पृथ्वी का एक है। पृथ्वी का एक है वो, जैसे ये पृथ्वी है ना, ये पत्थर है, ऐसा एक एक टाइप का वो पत्थर ही है। वह पत्थर किस प्रकार का, चमकने वाला पत्थर, जैसे रत्न चमकता है, किरणें निकलती हैं। रत्न को पकड़ेंगे तो हाथ जलेगा क्या, लेकिन प्रकाश तो है उसमें। एक जुगनू है, जुगनू देखा, कीड़ा, छोटा सा कीड़ा हो प्रकाश वाला, वो चमकता है रहा, लाइट का कीड़ा, लाइट पर बैठते वो कीड़े नहीं, स्वयं ही लाइट है वो चमकते, उसको पकड़ेंगे तो ऐसा कुछ लगता है कि ये गर्म है, तो उसमें से बैटरी कहाँ से आ गई, इतना सा वो जितनी भी चलता है उतनी बैटरी पड़ती है उसकी, लाइट लगाता हुआ जाता है वो, तो जलता है क्या, गर्म है क्या अंदर, नहीं है, मूल में तो वो ठंडा ही है, लेकिन ऐसे पुद्गल परमाणुओं का वहां पर संरचना है जिसके आपस में टकराने से प्रकाश उत्पन्न होता है। ये प्रकाश ठंडा भी है और गर्म भी है, जैसे अग्नि है, अग्नि का प्रकाश तो गर्म है, सूर्य विमान में जो प्रकाश है वो तो ठंडे हैं, और किरणें जो हैं निकलती, वो किरणें बाहर आने के उपरांत गर्म होने लगती है, ये विशेषता ये है। एक उदाहरण हम दे सकते हैं इसके लिए, कैसा है, एक कांच होता है जिसमें बड़े अक्षर दिखते हैं, कौन सा कांच बोलते हैं उसको, दूरबीन कांच, हाँ दूरबीन कांच कहो, वो उसको सूर्य किरण के साथ पकड़ो, ऐसा ऊपर नीचे करो, वो एकाग्र एक बिंदु बन जाए उसका, तो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, वह जल जाएगा, इसको आग लग सकती है, ऐसा पकड़ लो तो धुआं उठने लग जाएगा, जलने लग जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ, ये ग्लास तो ठंडा है, ग्लास को निकाल करके पकड़ो तो नहीं जल रहा है, परंतु ग्लास के माध्यम से उन किरणों को एकाग्र कर लिया, एकाग्र कर लिया, एक जगह केंद्रित कर लिया, तो वस्तु जलने लगी। तो कांच से निकली किरणें हैं, किरणें गर्म हैं या कांच गर्म है, उस प्रकार सूर्य विमान तो ठंडा ही है, परंतु सूर्य विमान से निकली हुई जो किरणें हैं, किरणों की विशेषता है कि वो वस्तु को जला भी सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। इसको कहते हैं आताप नाम कर्म। आताप नाम कर्म को बांधने के बाद सूर्य विमान में जन्म लेता है जीव, इसको आताप नाम कर्म कहते हैं। त्रिलोक नक्शा में आताप नाम कर्म, आताप नाम कर्म सूर्य विमान में, सूर्य जो बना है विमान है, उसमें जो एकेंद्री पृथ्वी का एक जीव है, उनको आताप नाम कर्म का उदय रहता है। जैसे एक पत्थर यहाँ से ले लिया, इनको एकेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है, लेकिन आताप नाम कर्म का उदय इनमें नहीं है इस पत्थर में, लेकिन उस पत्थर में एकेंद्री जाति नाम कर्म का भी उदय है और आताप नाम कर्म का भी उदय। आताप नाम कर्म के उदय से उसकी किरणें तो गर्म निकलेंगी, परंतु मूल उसका स्वभाव ठंडा रहेगा, अग्नि से अलग है वो, अग्नि नहीं है सूर्य, अग्नि नहीं है अग्नि में, सूर्य में बहुत डिफरेंस है, अग्नि को चार्ज नहीं कर सकते आप, अग्नि से विद्युत चार्ज होता है क्या, नहीं होता, परंतु सूर्य के किरणों से विद्युत चार्ज आप चार्जिंग कर सकते, विशेषता उसमें ये है। तो जिसका चार्ज होता वो गर्म नहीं रहता मूल में, उसकी किरणें गर्म रहती है और उस गर्मी को, उस विद्युत को विद्युत के रूप में कन्वर्ट करके उसको हम चार्ज कर सकते हैं। ये हाँ सूर्य के, तो सूर्य विमान है कैसा, एक नींबू है, नींबू, नींबू को काट दिया आधा, दो हो गए, सूर्य विमान का आकार आधे नींबू के कटे आकार का है। ऊपर तो सपाट है, नीचे गोल है। अपन को जो दिखता है वो नीचे का दिखता है। जैसे ये विमान है, नीचे का गोल भाग, ये पूरा गोल है मान लो, नीचे का ही दिखेगा, ऊपर का कुछ नहीं दिखेगा। परंतु उसमें विमान है, मंदिर है, देव बैठे हैं, देव आगे पीछे खींच रहे हैं, सब कुछ है वहाँ। प्रकाश ऊपर नहीं जाता, हाँ हाँ, नीचे आता है पूरा। हाँ, नीचे आता है उसका। अब वहाँ पर विमान में जो पूरा ही एकेंद्री जीव है वो तो चमकेगा ही, चमकता रहेगा, लेकिन वहाँ देव रहते हैं, चैतालय है, उस प्रकाश में वो भले ही रहते हैं। वहाँ पर कोई रात और अंधेरा का सवाल नहीं उठता, स्वयं ही सूर्य है, वो हमेशा प्रकाशित। इसी प्रकार से कल्प वृक्ष जो होते हैं, सूर्य के समान ही प्रकाश देने वाले कल्प वृक्ष भी होते हैं भोगभूमि में। भोगभूमि में रात दिन का सवाल नहीं है, और सूर्य और चंद्र आकाश में तो रहते ही हैं, वो तो भ्रमणशील रहते हैं। जम्बूद्वीप में जो जहाँ जहाँ भोगभूमि है, वो भोगभूमि के स्थान पर के आकाश में सूर्य चंद्र नहीं रहते, रहते हैं, लेकिन ये सूर्य चंद्र का प्रकाश कल्प वृक्षों के प्रकाश के सामने अंश प्रमाण भी नहीं है। वो यानी इससे ज्यादा प्रकाश कल्प वृक्षों का होता है। इसलिए कहते हैं भोगभूमि में सूर्य और चंद्र के दर्शन होते ही नहीं, दिखते नहीं वो, क्यों? उनसे भी ज्यादा इनका प्रकाश हो जाता है, तो दिखेंगे कैसे? जैसे आपके आंखों के सामने एक पावरफुल बल्ब का दो बल्ब जला दिया और दूर एक जीरो बल्ब जला दिया, वो जीरो बल्ब दिखेगा क्या? तो ऐसा होता है, जो कल्प वृक्षों का प्रकाश है वो आंखों पर पड़ रहा है तो आकाश के सूर्य और चंद्र नहीं दिखते, जो जीरो बल्ब के समान ही लगते हैं वहां। ये बुझ जाए तो वो दिख सकते हैं, और कर्म भूमि में ये बुझ जाते हैं और वो दिखने लगते हैं, ऐसा होता है। आतप, आतप समझ में आ गया? एक उद्योत भी है, इसमें नहीं है, उद्योत नाम कर्म भी है। उद्योत नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म को बांधा हुआ जीव चंद्र विमान में जन्म लेता है। जैसे अपन ने उद्योत नाम कर्म को बांधा, क्या बनेंगे? चंद्र विमान में एकेंद्री जीव होकर के जन्म लेंगे। हमारा शरीर जो रहेगा, एकेंद्री शरीर, अपने शरीर में प्रकाश रहेगा। कैसे प्रकाश रहेगा? मूल तो ठंडा रहेगा और किरण भी ठंडे रहेंगे, किरण भी ठंडे और मूल भी ठंडा। दोनों ठंडा हो तो उद्योत नाम कर्म, किरण तो गर्म हो और मूल ठंडा हो तो आतप नाम कर्म, ये समझना चाहिए। जिगुनु उसमें है, देखो उसका मूल भी ठंडा है और उसकी जो किरणें प्रकाश निकलता है किसी आंखों के लिए तकलीफ नहीं करता हो। चंद्र की किरणें आंखों के लिए तकलीफ नहीं करते, सूर्य की किरणें देख नहीं सकते, जला देती हैं। सूक्ष्म, सूक्ष्म नाम कर्म, इस नाम कर्म के उदय से जीव क्या बनता है? बादर और सूक्ष्म जीव दो प्रकार के हैं ना, सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेता है। सूक्ष्म ये भेद केवल एक इंद्रियों में ही है, द्विंद्रिय आदि में नहीं है सूक्ष्मता। द्विंद्रिय में सूक्ष्म जीव नहीं है, सभी वो बादर ही हैं, स्थूल हैं। एक इंद्रियों में सूक्ष्म भी हैं और बादर भी हैं। तो सूक्ष्म एक इंद्रिय बनने पर, सूक्ष्म एक इंद्रिय बनने पर अपना शरीर कैसा रहेगा? इतना छोटा रहेगा कि दूसरे के लिए बाधा भी नहीं पहुंचाएगा और दूसरे से बाधित भी नहीं होगा, इतना सूक्ष्म। और ये तीन लोक में ठसाठस सब जगह भरे हैं। पंच स्थावर का एक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म पृथ्वी, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म वनस्पति, ये सब जगह हैं। खाली नहीं है कोई भी स्थान, सब जगह है। लेकिन इतने होकर के भी वो किसी से बाधित नहीं होते और स्वयं अपने शरीर से किसी को बाधा नहीं पहुंचाते। कितने सूक्ष्म शरीर उनका होता है, तो इसको सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। अपर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म किसको कहते हैं? अपर्याप्त दशा में मरण करना, यानी जीव आया जन्म लेने के लिए, जन्म होने से पहले शरीर धारण को धारण करने से पहले ही मरण करे, उसको अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। अपर्याप्त, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होंगी, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन, ये छह पर्याप्तियां होती हैं। इन छह पर्याप्तियों को पूर्ण किए बिना, पूर्ण करने से पहले ही यदि मरण हुआ तो उसको समझना चाहिए अपर्याप्त नाम कर्म। साधारण नाम कर्म ये क्या है? बात तो साधारण है लेकिन समझ में नहीं आ रही है। साधारण नाम कर्म यानी जीव इस नाम कर्म को बांध लेता है तो उस जगह जन्म लेता है जहां पर शरीर तो एक है, आत्मा अनंत है। एक शरीर के मालिक आत्मा अनंत है, यानी बहुत सारे जीव हैं, अनंत जीव हैं, अलग अलग शरीर नहीं है, शरीर एक ही, आत्मा अनंत, उनको साधारण जीव कहते हैं। जिनका श्वासोश्वास, जिनका शरीर, जिनका जन्म, जिनका मरण एक साथ होता है, उसमें से एक मरा सब मरे, एक जन्मा सब जन्मे, एक ने श्वास लिया सबको श्वास मिल रहा है, एक ने छोड़ा सब ने छोड़ा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हाँ ऐसे जीव हम होते हैं, उनको साधारण जीव कहते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं, गेहूं का बीज बोया, वनस्पति में रहते हैं ये और किसी में नहीं रहते साधारण, उसमें गेहूं बीज बोया, गेहूं का बीज बोया, बोने के बाद वो अंकुरित तो होगा, कब होगा? चार दिन लगेंगे। सबसे पहले एक जीव आता है, उसको कहते हैं प्रत्येक वनस्पति। प्रथम आत्मा जो आती है उसका नाम प्रत्येक वनस्पति, आकर के उसमें जन्म लेगी, गेहूं में, बीज में। पहले तो अचित है, वो जीव रहित है, बाद में जीव आएगा, जीव आए बिना उगेगा नहीं, वो बड़ा नहीं होगा, ये भी है ना। तो पहले बीज बोते हैं, उसमें जीव नहीं है, पर जीव आने की योग्यता है कि नहीं है? योग्यता तो होना ही चाहिए, उस योग्यता को योनि स्थान बोलते हैं। मूंगफली होती है, उसका अग्रभाग तोड़ करके आप बो नहीं आएगा, मतलब योनि स्थान कौन सी है? जो अग्रभाग है वही योनि स्थान है, वहीं पर आत्मा आती है। पर उसके लिए आहार मिलना शुरू हो जाए, उस योनि स्थान के लिए आहार मिलना प्रारंभ हो गया, पानी मिल गया, खाद मिल गया, मिट्टी मिल गई, सूर्य प्रकाश मिल गया, मिलते ही उसमें परिपक्वता आती है, वो फूल जाता है। फूलते ही जब उसका वातावरण बन जाता है, बन ही गया कि कोई ना कोई जीव जो इस पर्याय में आने वाला है, जन्म लेने वाला, वहां कर्म बांध करके आ रहा है, वो आकर के इसमें जन्म लेता है। जन्म लेते ही एक एक आया है, अंतर मुहूर्त तक अकेला वो एक ही रहता है। इसके उपरांत अंतर मुहूर्त के पश्चात उसमें साधारण नहीं, साधारण जीव आने लगते हैं, साधारण जीवों की उत्पत्ति होने लगती है। साधारण जीव यानी एक साथ अनंत जीव आएंगे और एक शरीर को धारण करेंगे, उनका शरीर सेपरेट, और पहला जो जीव आया जिसको बीज को ही जिसने अपनी अपना शरीर बना लिया वो अलग, उसको तो कहेंगे प्रत्येक वनस्पति, उसको कहेंगे क्या कौन सी वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति जो आया बीज में आया वो प्रत्येक वनस्पति। अब उसका शरीर बढ़ने लगा, अंतर मुहूर्त तक तो अन्य जीव नहीं आएंगे कोई भी, वो अकेला रहेगा अपना शरीर बनाता रहेगा। अंतर मुहूर्त के पश्चात वो साधारण जीव अनंत एक साथ आएंगे, एक साथ जीव आए और उस प्रत्येक जीव के शरीर के सहारे से रहने वाले जो पुद्गल परमाणु हैं उनको ग्रहण करेंगे, अपना शरीर बनाएंगे और शरीर बना करके उसके आश्रय से जिएंगे। किस आश्रय से? प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से साधारण वनस्पति जिएंगे। अब एक आया, एक शरीर बना, ऐसे कितने शरीर रहते हैं प्रत्येक वनस्पति के आश्रय से? तो कहते हैं अनंत साधारण शरीरधारी जीव रहते हैं। और एक एक शरीर में कितने जीव रहते हैं? तो अनंत जीव, अनंत जीवों का एक साधारण शरीर और अनंत जीवों का एक साधारण शरीर, ऐसे साधारण शरीर की संख्या कितनी रहती है? तो अनंत। और फिर जीव कितने रहते हैं? अनंत अनंत। इसलिए कहा है तीर्थंकरों ने आलू प्याज नहीं खाना, मोड़ कंदमूल में सबसे ज्यादा होते हैं ये साधारण वन, इन्हीं की रक्षा करने के लिए, इन्हीं पर दया करने के लिए अपन कंदमूल त्यागते हैं। त्यागने का मतलब क्या? शोक है, हमने इतना त्याग किया है तो त्याग करने के लिए लिखा है इसलिए हम त्याग रहे हैं, इतना ही है क्या? नहीं, क्यों त्याग रहे हैं? उन जीवों पर दया करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, अहिंसक बनने के लिए, धर्मात्मा बनने के लिए, अहिंसा के उपासक बनने के लिए, यही तो धर्म है। आप उसको खाना छोड़ते हैं तो आपके पास कौन सा धर्म है? अहिंसा धर्म है। कौन सा अहिंसा धर्म? तो साधारण वनस्पति का एक जीव जो अनंतों का घात होता था उस घात को हमने रोक दिया। हम प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते। तो सबसे पहले वनस्पतियों में कौन सी वनस्पति त्याग करे ये भी तो कहा है। आप क्या करते हैं दस लक्षण में, वो सब्जी हरी सब्जी ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, और दस लक्षण के बाद सब कंदमूल हली सब 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 खाएंगे, एकदम ही ब्रेक छोड़ देते हैं और एकदम ब्रेक लगा देते हैं, ऐसे में एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसा क्यों करते? दमदार ब्रेक होना चाहिए। छोड़ना हो तो आलू प्याज पूर्ण छोड़ो, पहले पूर्ण किसको पहले छोड़ना? कंदमूल को। कंदमूल में सबसे ज्यादा साधारण वनस्पति का एक जीवों की संख्या रहती है, एक साधारण शरीर में अनंत जीव रहते हैं और एक प्रत्येक वनस्पति का एक उस शरीर के आश्रय से कितने साधारण शरीर रहते हैं? अनंत। और एक एक शरीर में कितने जीव हैं? अनंत अनंत। तो अनंत अनंत, अनंत इंटू अनंत इज इक्वल टू अनंत अनंत, उतने जीव रहते हैं, उन्हीं जीवों पर दया करने के लिए कंदमूल त्यागा जाता है। फालतू नहीं त्यागा जाता, नहीं मांसाहारी नहीं, मांस देव एक इंद्रिय जीव मांस शरीरी नहीं होते। कंदमूल खाने वाला शाकाहारी ही है, मांसाहारी नहीं। मांस का मतलब ऐसा शरीर होना चाहिए जिसमें रक्त का संबंध हो, मांस का संबंध हो, हड्डी का, वहाँ मांसाहार सप्त धातु जहाँ होते हैं वहाँ मांस शरीर का संबंध आता है। परंतु एकेंद्री वनस्पतियों में मांस नहीं रहता, हड्डी नहीं रहती, रक्त नहीं रहता, सप्त धातु नहीं रहते, किंतु इसमें जीव रहते हैं, जीव का शरीर रहता है और शरीर में एक रस होता है। ये रसदार शरीर रहते हैं। गन्ना गन्ने का रस, फल फल का रस, आम आम का रस। रस शाकाहार है कि मांसाहार है? शाकाहार। शाकाहार तो है, लेकिन कहते हैं जीवों का घात अधिक है तो उसको भी त्यागो। मांसाहार में तो जीव घात है ही, वहां पर पंचेंद्री जीवों का घात है। अंडा है, पंचेंद्री जीव का घात है। अली है, उसमें द्विजीवी दो इंद्री जीव का घात है। हिरण है, हिरण का मांस। कौवा है, कौवे का मांस। कबूतर है, कबूतर का मांस। मुर्गी मुर्गी का मांस। पंचेंद्री जीवों का घात है इसमें। बड़ा पाप कौन सा? एक इंद्री जीवों का घात करना सबसे बड़ा पाप है या पंचेंद्री जीवों का? पंचेंद्री जीवों का। पंचेंद्री जीवों का घात करने से वो जो शरीरधारी पंचेंद्री जीव था उसकी हिंसा तो होती है, लेकिन उसके मांस में, मृत मांस में, उसको चाहे पकाओ चाहे कच्चा रहने दो, उसमें निरंतर संगी पंचेंद्री उसी जाति के समूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती ही रहती है और वो असंख्यात होते हैं मांस में। यानी मांस में दो प्रकार के जीव हो गए। एक वह जो मर गया, हमारे मारने से मर के चला गया, लेकिन इसमें उस जाति के जीव उसके मांस में निरंतर समूर्छन पंचेंद्री जीव उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, उनका भी घात अपने माध्यम से होता है। और वो जीव चाहे मांस को गर्म करो चाहे कच्चा रखो, उनकी उत्पत्ति रुकती नहीं, निरंतर होते रहते हैं। ये कहा तो देखो, असंख्यात पंचेंद्री जीवों की हिंसा हो रही है मांस खाने में, पंचेंद्री जीवों की। एक तो पहला चला गया और उसके बाद असंख्यात की हिंसा होने लगी मांस से। एक इंद्री में, कांदा में, मांस खाने जैसा पाप लग रहा है क्या? वो पंचेंद्री है क्या? पंचेंद्री तो नहीं है, मांसाहारी तो नहीं कहलाओगे, शाकाहारी ही कहलाओगे, लेकिन पाप भी लगेगा। किस संबंधी? एकेंद्री जीव, अनंत एकेंद्री जीव मरने संबंधी पाप लगेगा। उसमें अनंत तो नहीं है। किसमें? मांस में। मांस में अनंत नहीं, असंख्यात पंचेंद्री, प्रति समय असंख्यात पंचेंद्री जीवों का घात होता रहेगा। इसमें प्रति समय अनंत जीवों का घात होता रहे, डिफरेंस इतना है। पर बड़ा पाप वही है। समूर्छन है ना, जिनकी आयु अंतर्मूर्त की होती है, शरीर पूर्ण करने से पहले ही मर जाते हैं। शरीर पूर्ण धारण करने से पहले पहले ही मरण होता, आयु अंतर्मूर्त, पर्याप्तियां पूर्ण करने से पहले ही मर गए। तो जन्म मरण होता ही रहता उनका, और उसमें हम निमित्त बन गए तो अंतर्मूर्त से पहले उनको हम मार सकते हैं, हम निमित्त बन सकते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर ही तो नहीं है, बादर शरीर ही है, स्थूल शरीर ही है, उनकी हिंसा हो सकती है, अकाल मरण हो सकता है अपने निमित्त से। हम निमित्त बनते हैं ना, मांस खाएंगे तो निमित्त बनेंगे, इसलिए मांसाहार का त्याग भी क्यों? एक तो मांस जो है वो अपक्ष है, खाद्य नहीं है, और उसमें हिंसा की दृष्टिकोण से देखो तो असंख्यात पंचेंद्री जीवों की हिंसा है। ये जो अंडा होता है, अंडे को आजकल पागल लोग शाकाहारी प्रचार करते हैं, शाकाहारी से पूछना चाहिए, अंडा कहीं शाकाहारी हो तो शाक यानी वनस्पति, शाखाओं पर लगना चाहिए, जो शाखाओं पर लगता है वो शाकाहार, फल शाखा पर लगते हैं। तो अंडे कहीं शाक पर लगता है क्या? पर शाकाहारी कैसे? किसी पेड़ पर अंडा लगा हुआ मिल जाए तो भगवान भी मान कर लेंगे, हाँ ये शाकाहारी ही है।
अंडे में से फिर से जीव उत्पत्ति नहीं होगी।
हाँ, जी इसलिए प्रचार करें शाकाहारी से, तो शाकाहार क्यों कर रहे हैं? मांसाहारी कहो ना, कि मुर्गी न रहने से शाकाहार बन जाता है, मुर्गी उसके भीतर जीव न रहने से वो शाकाहार बन जाएगा क्या? तो हम भी मरने के उपरांत हमारा शरीर शाकाहार है, ऐसा कहो फिर, इसको मांस कहो ही मत, वनस्पति कहो फिर। अपन भी मरते हैं तो वनस्पति बनना चाहिए, तो वनस्पति दिखती है क्या? हम मृत्यु के पास हमारे शरीर क्या वनस्पति में कन्वर्ट होता है क्या? तो शाकाहार नाम देना गलत है, चाहे उसमें जीव रहे या न रहे, शाकाहार कहना गलत है, गलत है। शाक यानी वनस्पति, ये अर्थ निकलता, शाखाओं पर लगे जो आहार वो शाकाहार, या शाक से बने जो आहार वो शाकाहार, कुछ भी कह देते हैं ना, बुद्धि नहीं है। हाँ, खाने के लिए जो मांगने वाला कौन है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? उन्मत्त ज्ञान। कोना ज्ञान? आ गया उदाहरण। कुमति ज्ञान कहता है अंडा भी शाकाहार। कुमति कुश्रुत ज्ञान कहता है अंडा भी शाकाहार। और सम्यक ज्ञान, सुमति ज्ञान और सुश्रुत ज्ञान कहता है मांसाहार मांसाहार है, शाकाहार शाकाहार ही है। ये विवेक पूर्ण ज्ञान है। जो भी इसका प्रचार करते हैं और जो भी ऐसा समझते हैं इस प्रचार के प्रभाव में आकर के कि ये शाकाहार है, इसमें जीव नहीं रहते, इसको खाने में पाप नहीं है, अंडे को पाप नहीं है, ऐसा जो सोचते हैं, उनके पास भी कुमति और कुश्रुत ज्ञान रहता है और पहले गुणस्थान रहता है। सब मिथ्या दृष्टि है, सब मिथ्या दृष्टि है। उल्टा सोचने वाले, उल्टा गहराई में जाने न जाने वाले, उल्टा सोचने वाले और उल्टा सोच करके पाप को भी जीव रहित, माने जिस वस्तु को खा रहे हैं उसको जीव रहित वस्तु कह करके जो खा रहे हैं वो मिथ्या ज्ञान ही है। इसलिए भगवान कहते हैं वस्तुओं में कहां कहां पर जीव होते नहीं होते इसको पता लगाओ, उसका सही पहचान प्राप्त कर लो, इसके बाद निर्णय लो इसमें जीव है इसमें जीव नहीं है। कच्ची ककड़ी में साधारण वनस्पति भी रहते हैं और प्रत्येक वनस्पति भी है, दोनों है उसमें। कच्ची ककड़ी में, ककड़ी, कच्ची ककड़ी में दोनों प्रकार के, प्रत्येक वनस्पति भी है और साधारण वनस्पति भी है, लेकिन मात्रा की अपेक्षा से, क्योंकि ककड़ी ऊपर लगती है और कांदा नीचे बनता है, जिसको सूर्य प्रकाश नहीं मिलता वहां साधारण जीवों की संख्या अनंत गुणित अधिक होती है, और जहाँ सूर्य प्रकाश मिलता है वहाँ साधारण जीवों की उत्पत्ति कम रहती है, रहती तो है लेकिन कम रहती है, और वह उसमें जितना कच्चापन होता है कोमलपन होता है उस समय साधारण वनस्पति की संख्या अधिक होती है। जैसे आप लोग चने की भाजी बनाते, भाजी चना क्या बोलते मराठी में चने की भाजी को, हरभरे की भाजी, उसके कोमल कोमल अग्रभाग को तोड़ के लाया जाता है और उससे भाजी बनाई जाती है, उसमें अनंत अनंत है, लेकिन तुलना से देखो कांदा में उससे ज्यादा अधिक है, कांदा में अधिक है और उस भाजी में कम है। हाँ, इसलिए श्रावक उस भाजी को भी त्यागता है। कांदा त्यागने के बाद क्या त्यागना चाहिए? ये भाजी पत्ते, इसको त्यागना चाहिए, क्रम है। आप क्या करते हैं, भाजी पत्ते त्याग देंगे कांदा रखेंगे। तो जीव इंद्री तो जीव गाड़ी में बैठकर ही चलनी चाहती हो, पैदल तो चलना नहीं चाहती हो। जीव रसना इंद्री जीव गाड़ी में बैठना चाहती हो। देखो ना कैसा कहती है, कांदा मत छोड़ो, वो तो उपेट में बहुत अच्छा लगता मुझे। उपेट में बहुत अच्छा लगता है वो, भाजी छोड़ो चलता है। तो रसना इंद्री जैसा कहता है वैसा आप करोगे तो रसना इंद्री तो उन्मत्त है वो, है वो तो पहले गुण स्थान में रहती है रसना। और रसना को समुदय, ये रसना क्या करते हो तुम? भगवान तो ऐसे बोल रहे हैं, पहले कांदा छोड़ो कह रहे हैं भगवान, ये रसना अब कांदा मत मांगना। भाजी पत्ते धीरे धीरे त्याग देना, वो भी छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना, लेकिन पहले कांदा छोड़, रसना को समझा दो। रसना बहुत खतरनाक है, आराम से रहना चाहती है, उसका नाम इसलिए जीप है, वो जीप गाड़ी में सुखपूर्वक चलना चाहती है। देखो विवेक समझा रहे हैं, सभी छोड़ना ही है, परंतु कोई नहीं खाना है यहाँ। अंत में तो चावल भात भी छोड़ना है, और रोटी भी छोड़ना है, और पानी भी छोड़ना है, और समाधि मरण लेना है, सब छोड़ने को बता रहे हैं, लेकिन क्रम बताया जा रहा है, क्रम धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे तो करना ही है, और दौड़ते हुए भी करना है, लेकिन क्रम बता रहे हैं। आप धीरे धीरे छोड़ो या एक झट छोड़ दो चलेगा, लेकिन क्रम बता रहे हैं। विवेक जिसमें अधिक हिंसा है पहले छोड़ो, उससे कम जिसमें हिंसा है उसको बाद में छोड़ो, उससे कम हिंसा जिसमें है उसको उसके बाद छोड़ो, इससे कम हिंसा जिसमें है उसको लास्ट में छोड़ो। विवेक दिलाया जा रहा है कौन सा पहले छोड़े, जीव हो, अधिक से अधिक जिसमें जीव हो उसको पहला छोड़ना। तो सबसे पहला नंबर किसका लगता है? कंदमूलों का। कंदमूल को एकदम छोड़ो तो बहुत अच्छा है? कंदमूल में सब आ गए, परंतु उसमें आप यदि कंदमूल तो अनेक हैं, तो उसमें क्या क्या छोड़ना, सबसे पहला क्या छोड़ना, उसमें भी नंबर लगाओ। सबसे पहला आलू प्याज, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रयोग में यही आते हैं, जो बार बार प्रयोग में आते हैं और बार बार हिंसा होती है उसको पहला छोड़ो। अब गाजर तो आप कभी कभी खाते हैं, तो कभी कभी की हिंसा होना अलग है और डेली होना अलग है, तो ज्यादा हिंसा इससे हो रही है, तो ज्यादा आप खाते हैं बार बार खाते हैं उनको पहला छोड़ो। और जो बार बार खाने में नहीं आते, कभी एक आध बार खाते हैं, उनको बाद में छोड़ सकते हो, और उसको भी छोड़ना चाहते हैं, जल्दी ही छोड़ना चाहते हैं, तो सब छोड़ो, कौन मना करता है। सत्यानुसार त्याग और सत्यानुसार तप, बताया है कि नहीं? कालांतर में कैसे क्रम से छोड़ो, आपकी शक्ति को देखकर छोड़ो। शरीर चलता है कि नहीं ये देखना, शक्ति का मतलब ये, रसना इंद्री की शक्ति को नहीं देखना, वो क्या कहती है उसकी शक्ति है क्या नहीं ये नहीं देखना। रसना इंद्री को दो न दो बराबर मांगती रहती है, नहीं दो तो भी चलती है, दो तो भी चलती है। रसना इंद्री के वशीभूत होकर के कुछ नहीं करना, इंद्री को तो जीतना है, इंद्री विजयी बनना है। रसना इंद्री को जीतने के लिए यदि कुछ करना है तो वो रास्ता ही अलग है, इंद्री जीत की रास्ता अलग है और हिंसा जीत की रास्ता अलग है। हिंसा को यदि जीतना चाहते हैं ये सोच रहे हैं, देखो संयम दो प्रकार का है, आपको संयमी बनना है, संयम दो प्रकार का है। तो संयम दो प्रकार का कौन कौन सा, एक प्राणी संयम और इंद्री संयम। जब प्राणी संयम की रक्षा के लिए आप सोच रहे हैं तो आपको जीव हिंसा जिसमें अधिक होती है उसको पहले त्यागो। तो जितने प्रमाण में आप जीवों की रक्षा करते जाएंगे, हिंसा का त्याग करते जाएंगे, प्राणी संयम आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, प्राणी संयम की वृद्धि होती जाएगी। जितने वस्तुओं को त्यागा प्राणी संयम आया, वस्तुओं को त्यागा प्राणी संयम आया। इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम ऐसा है, इंद्रिय संयम तो ऐसा है, सुन लेना, इंद्रिय संयम तो ऐसा है, अचित्त को भी त्यागना और सचित्त को भी त्यागना, यानी जीव सहित पदार्थ को भी त्यागना इंद्रिय संयम है और जीव रहित पदार्थ को भी त्यागना इंद्रिय संयम है। कैसे, देखो जीव कहती है आलू चाहिए, प्याज चाहिए, ये कौन कह रही है, जीव ही तो है। जीव कहती है लड्डू चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। तो लड्डू तो अचित है, प्याज तो सचित है, इसमें अनंत जीवों का घात है, और लड्डू खाने में जीवों का घात तो नहीं लेकिन अचित है, इंद्रिय विजय नहीं होगा। इंद्रिय संयम पालन करना हो तो लाड़ू भी त्यागो, हिंसा तो नहीं है, हिंसा नहीं है, लेकिन इंद्रिय संयम धारण करना हो तो लाड़ू त्यागो। जीव क्या मांगती है, पेट भर दे दो, लाड़ू ही लाड़ू दे दो, जीव ये कहती है। तो जीव की बात नहीं मानना, वो पेट भर मांगती है तो एक टुकड़े देना ये इंद्रिय विजय है। ये खाते समय ख्याल रखो, जीव को मांगनी नहीं देना, एक बात ये है, जीव की मांग होना ही नहीं चाहिए, पहली बात ये है। अगर कोई दे रहा है या आपको आवश्यक हो गया है किसी कारणवश, हो सकता है डॉक्टर ने कहा इसको लाड़ू के साथ ले लेना तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, तो यहाँ पर जीव नहीं मांग रही है, नहीं समझे, जीव नहीं मांग रही है, आपको तो शरीर के लिए देना पड़ रहा है, जीव की मांग की पूर्ति अपने को करना भी नहीं है क्योंकि इंद्रिय विजयी बनना चाहते हैं। अब वो शरीर के लिए आवश्यक हो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जीव के वास्ते मत लेना। मन मांगता है कि इसको भी दे, इसको भी दे, मन मनोरंजन करता है, विषयों में मनोरंजन करना चाहता है, विषयों का सुख लूटना चाहता है। मन की बात को और इंद्रिय की बात को नहीं मानना, शरीर के लिए तुम्हें क्या चाहिए ये सोचना, शरीर के लिए क्या आवश्यक है, गड्ढे भरने के लिए क्या आवश्यक है उतना दे देना, उससे काम चलेगा आपका। तो ऐसा जो करता है वो इंद्रिय विजयी भी बनता है और जीवों का ध्यान रखने वाला, ख्याल रखने वाला कि किसमें अधिक और किसमें कम, तो वो उस तरफ भी देखता, इसमें जीव अधिक है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम, कौन कौन से कितना त्यागो। तो आलू प्याज भी त्याग दिया एक दिन, सभी ऊपर के वस्तुओं को भी त्याग दिया, ककड़ी त्याग, सब त्याग, सब त्याग, सब त्याग, और एकाद वनस्पति कोई रखा, एकाद वनस्पति और रखा। तो एक वनस्पति से अगर आपको काम चलता है तो उतना खाओ, उतने प्रमाण में आप संयमी बन गए क्या, नहीं संयमी बन गए। ये कौन सा संयम कहलाया? ये प्राणी संयम। अगर आप वनस्पति का त्याग कर रहे हैं तो प्राणी संयम है, और अगर आप अच्छे अच्छे वस्तु रसदार वस्तु त्याग कर रहे हैं तो इंद्रिय संयम है। इंद्रिय संयम प्राणी संयम दोनों संयम को सुरक्षित रखने के लिए एक ही बात को ध्यान में रखना है, एक तरफ जीव हिंसा का और एक तरफ मन के मनोरंजन का, इंद्रियों की इच्छाओं का ख्याल रखना, इच्छाओं को रोकना, ये इंद्रिय विजय है। इच्छा निरोधो तप, इंद्रियों की इच्छाओं को, इंद्रिय विषयों की इच्छाओं को रोकना, ये इंद्रिय विजय है। इसलिए कहा जो जिस वस्तु के प्रति हमारी इच्छा ज्यादा रहती है या इच्छा उधर आकर्षित होती है, उस वस्तु को पहले त्यागना चाहिए, वो सही इंद्रिय विजय। यही वस्तु चाहिए, उससे ज्यादा जुड़ना वो इंद्रिय विजय नहीं है। वस्तुओं में सहजता रहनी चाहिए। वस्तु जब हमसे अति जुड़ जाती है तो हम उसके आदि हो जाते हैं, व्यसनी हो जाते हैं। कोई भी वस्तु, कोई मिर्ची का व्यसनी रहता है, मिर्ची के बिना भोजन अच्छा लगता ही नहीं। कोई नमक के अधीन होकर के चलते, कोई मीठे के अधीन होकर के चलते, होता है कि नहीं? वस्तु से हम ज्यादा जुड़ जाते हैं, तो वस्तु से नहीं जुड़ना, वस्तु से दूर ही रहना और ये सोचना कि शरीर के लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है, उसको देख करके केवल भूख को मिटाने के लिए आहार देना होता है। भूख भर मिट जाए इससे मतलब रखना चाहिए, उसमें टेस्ट है, इसमें टेस्ट है, ये बहुत अच्छा लगता है। टेस्ट के लिए आहार करना है क्या? हाँ, टेस्ट के लिए आहार कर रहे हैं तो इंद्रिय विजय ही नहीं। लोग आहार देते समय महाराज को भी सिखा देते हैं टेस्ट कैसे लेना। महाराज ये जरा इस टेस्ट बदलता है, लेकर के तो देखो, हमको ही असयम की बातें हमको ही सिखाने के लिए खड़े हो जाते हैं। महाराज टेस्ट बदलता है, ये पापड़ ले लो टेस्ट चेंज हो जाएगा। कितना डिफरेंस है एक सावक में और मुनि में, उनके विचार कहाँ रहते हैं और हमारे विचार कहाँ चलते हैं। उस समय हमको हंसी आती है कि टेस्ट कहते ही हंसी आने लगती है हमको कि देखो कहाँ है हम, अपन क्या कर रहे हैं और ये क्या बोल रहे हैं। हमको इंद्रिय विजय, इंद्रिय विषयों से दूर रह करके क्षुधा वेदनी को दूर करने के लिए आहार देने का ख्याल भर हमेशा प्रत्येक ग्रास पर हमारा रहता है। जब हम आहार लेते रहते हैं तो प्रत्येक ग्रास में हम सोचते हैं इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय, इंद्रिय विजय। आप क्या कहते हैं? टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट। कितना फर्क है। एक साधु के भोजन करने में और श्रावक के भोजन करने में बहुत फर्क रहता है, इसलिए तो असयमी कहा। टेस्ट टेस्ट कहने वाला असयमी, टेस्ट छोड़ देते हैं, टेस्ट छोड़ना ही बेस्ट है। शरीर टिकाने के लिए आहार दिया जाता है, शरीर को टिका 24 घंटा चले इसके लिए कुछ गड्ढे में डालो, ये भरा रहेगा तो चलेगा गाड़ी। चली गई, गाड़ी तो चलती है, पेट्रोल से नहीं चलता है तो डीजल डालो, डीजल महंगा है तो राखेल डालो। और साधु जो है मांगते नहीं, यथा लब्ध भोजन करते हैं, यानी जो है उपलब्ध उसमें से लेते हैं। आज वो नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो बनाना चाहिए था, ऐसे विचार आ गए तो गए, गया संयम, संयम गया। वो क्यों नहीं बनाया, पूछेंगे भी नहीं, आप बनाओ कहेंगे भी नहीं, याचना भी नहीं। यहाँ जो आपने बनाया है उसमें से शरीर के लिए क्या क्या योग्य क्या क्या अयोग्य, इतना ही देखते हैं। थाली जब दिखाया जाता है साधु को तो उसमें से कुछ को उठाते हैं और कुछ को बचा लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिसको बचाया उसमें आशा है क्या? आशा नहीं, आशा को तो खत्म ही कर चुके हैं वो, पर वो शरीर के लिए भूख वेदना को शांत करने के लिए वो इतना पर्याप्त है, ठीक है, ये चुनाव कर लेते हैं। चुनाव है वो, शरीर की क्षुधा को मिटाने के लिए क्या क्या आवश्यक है चुनाव कर लिया, और उसमें परिवर्तन भी कर सकते हैं, जो आप खाते हैं वो भी ले ले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो आवश्यक हो तो ही लेते हैं, अन्यथा उसको भी कैंसल। तो साधु भाजी पत्ती नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? वो तो जो भी आहार बनता है वो हिंसा से तो बनता है, प्राणी संयम के पालन के लिए। हाँ, प्राणी संयम का पालन। अब उसमें आहार तैयार करने में अग्नि का एक की हिंसा हुई है, जल भी जीव है, जल को भी पकाया है, गर्म किया है, वनस्पति जीव है, वायु का एक भी हिंसा होती है, सब प्रकार से मतलब हिंसा होकर के ही भोजन बनता है। अब श्रावक जिस भोजन को तैयार करता है हिंसा से करता है, करो कहेंगे तो उसका पाप मुनि को लगता है। मुनि को कहा है कृत कारित अनुमोदना, तीनों से दूर रह करके आहार लेंगे तो मुनि को पाप लगेगा ही नहीं। जिस भोजन को ले रहे हैं उस भोजन ग्रह का ग्रहण का पाप उनको लगेगा नहीं। कृत कारित अनुमोदना से दूर रहना, और मांगना नहीं, बना हुआ है उसमें से मांगना भी नहीं, न मांगना, ये इंद्रिय विजय है। न मांगना इंद्रिय विजय, और जो बना हुआ है वो ले रहे हैं तो पाप लग रहा है ऐसा नहीं, कृत कारित अनुमोदना से पाप लगता है तो पाप नहीं लगेगा। फिर लेने मात्र से लगना चाहिए, अवश्य लगता है, परंतु ये अपरिहार्य हिंसा है, अपरिहार्य है, ये मार्ग तो यही है। लगता है कह करके सब त्यागेंगे तो सबसे बड़ी हिंसा हो सकती है। नवदा भक्ति से दे रहा है, भक्ति तो अलग बात है, परंतु जो दे रहा है उसमें हिंसा अहिंसा की चर्चा, हिंसा अहिंसा की चर्चा हो रही है कि वो दे रहा है और हम ले रहे हैं, कोई याचना नहीं, पहले से कोई कृतकारित अनुमोदना का संबंध नहीं, फिर लेते समय ले रहे हैं, इसके बाद ले रहे हैं तो उस समय हिंसा का दोष लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है, लेकिन वो अपरिहार्य हिंसा है, अपरिहार्य, उसको टाल नहीं सकते, जो हो रहा है उसको टालना असंभव। जिस हिंसा को टालना असंभव है वो हिंसा आवश्यकता की कोटि में आती है, और जो जानबूझ करके हो रहा था, अनावश्यक रूप से हो रहा था, अज्ञान अवस्था से हो रहा था, उन सब का परिहार हो चुका है, त्याग हो चुका है। जी, दो पर सोचा जाता है, आवश्यक हिंसा अनावश्यक हिंसा। साधु श्वास लेते हैं कि नहीं, धरती पर ही चलते हैं कि नहीं, तो पृथ्वी का एक जीव की हिंसा होती है, वायु का एक जीव की हिंसा होती है, तो पृथ्वी का एक वायु का एक इस जीव की जब हिंसा होती है तो साधु को पाप तो लगना चाहिए, लगता ही है, परंतु ये आवश्यक हिंसा की कोटि में रखा जाएगा, ये परिहार हिंसा नहीं है, ये अपरिहार हिंसा है। इन्हें परिहार हिंसा को परिहार समझकर त्यागते 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 त्याग की चरम सीमा पर जाना महाव्रत है, और उस चरम सीमा पर पहुंचने से पहले जो हमारी चर्या रहती है वो अनुव्रत है। मुनि त्याग की चरम सीमा पर गए, जो जो अनावश्यक लगा सब छोड़ दिया, ये महाव्रत कहलाता है। वस्त्र तक अनावश्यक बना दिया, क्योंकि जल का एक जीवों की हिंसा वस्त्र धोने में हो सकती है, और वस्त्र के बिना रहा जा सकता है कि नहीं ये देखा, रहा तो जा सकता है, तो इसलिए वो भी अनावश्यक हो गया, अनावश्यक हिंसा की कोटि में था, अनावश्यक कर दिया उसको भी, तो दिगंबर बन गए, चरम सीमा पर आ। इसके बाद क्या छोड़ेंगे? स्नान करेंगे। स्नान क्यों करेंगे? स्नान के बिना भी चल सकता है कि नहीं देखा, तो चल सकता है, तो स्नान भी छोड़ दिया। अब देखो, हिंसा पूरी तरह से, हिंसा को रोकने के लिए प्राणी संयम को अति उत्कृष्ट रूप से पाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। वस्त्र त्यागना भी प्राणी संयम के लिए, स्नान न करना भी प्राणी संयम के लिए, देख देख करके चलना भी प्राणी संयम के लिए, और क्या क्या प्राणी संयम के लिए, भोजन में ये कर रहे हैं, आज ये लेंगे ये नहीं लेंगे, महाराज चार सब्जियां बनाई थी क्यों नहीं ले रहे हैं? प्राणी संयम है अपने पास, कुछ तो त्यागना है, कुछ तो त्यागना है, प्राणी संयम है, आवश्यक अनावश्यक को भी समझना है, केवल क्षुधा वेदना को निवारण करना है, इस उद्देश्य से उसमें से कुछ हटाते हैं और कुछ बचाते हैं, तो ये भी प्राणी संयम के लिए। अब महाराज लड्डू बनाए तो उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? तो इंद्रिय संयम के लिए, तुम भक्ति से बनाए तो हो, महाराज आज दसरा है थोड़ा सा तो लियो, दसरा है तो एक ही डालो, थोड़ा सा डालो, कम डालो, ठीक है, तुम्हारी मन संतुष्टि के लिए, तुम्हारी मन संतुष्टि के लिए रहे हो, इंद्रिय विजय की ओर उनका वो है, आप भक्ति से दे रहे हैं तो दे दो, कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा नहीं, यहाँ पर संयम ब्रेक है, ब्रेक है, ब्रेक लगा करके चलना पड़ता है, एक्सीडेंट होनी संभव है यहाँ। अदंत क्या सुनाई नहीं, अदंत धावन, अदंत धावन कहते उसको, अदंत धावन यानी दांत घिसते नहीं, पेस्ट लगा करके ऐसा घिसेंगे नहीं, सफाई करेंगे, सफाई करेंगे, उसमें बैठा हुआ जो है वो हो जाए, खुला करेंगे, सफाई करेंगे, लेकिन आप जैसे कॉलगेट से और उससे घिसते हैं, घिसने के लिए नहीं कहा, दांत घिसना नहीं, सफाई जरूर करना लेकिन घिसना नहीं, अदंत धावन। क्यों? दांत को घिसना क्या है? ये दांतों का श्रृंगार है, दांत ठीक लगे लगना चाहिए, ये दांतों का श्रृंगार, श्रृंगार नहीं करना है तो श्रृंगार का त्याग है। दांत अच्छी तरह से श्रृंगारित नहीं रखेंगे, क्यों? शरीर का मोह नहीं है। शरीर के मोह को त्यागने के लिए दांत की तरफ श्रृंगार करने की, अच्छे रखने के भाव भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ इतना ही है कि दांतों का रोग ना हो, दांत काम देते रहे, इतने से मतलब है। तो औषधि लेकर के कुल्ला कर सकते हैं, कुछ हो गया हो तो वो दंत घर्षण का दोष नहीं आएगा। सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं, घिसने में, श्रृंगारित करने में, अच्छे रखने में, ज्यादा चिंता करने में शरीर का मोह आ जाता है। शरीर का मोह करना नहीं, जितना आवश्यक उतना ही, अनावश्यक काम कुछ नहीं करना, यहाँ एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं जितना आवश्यक है उतना ही करना, देखना ये आवश्यक है क्या नहीं पहले, फिर देख करके कितना आवश्यक कितना अनावश्यक उसमें भी और देखना, और फिर अनावश्यक को त्यागो, आवश्यक को करो। बहुत लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है ये अपन ने संयम की फैक्ट्री खोली है तो प्राइवेट लिमिटेड संयम फैक्ट्री है ये, इसमें से सब लिमिटेड ही रहते हैं ब्रेक लगा करके चलना संयम है, टाइम हो गया है, सब लिमिटेड। ज्ञान लिमिटेड हो तो संयम पालन नहीं हो सकता। ज्ञान अनलिमिटेड, हर विषय में विचार रहना चाहिए, चिंतन रहना चाहिए, पता रहना चाहिए कैसा करना, क्या नहीं करना, करना तो ऑटोमेटिक गाड़ी संयम की ओर बढ़ती है।
ज्ञान से धर्म,
हाँ, ज्ञान से ही धर्म का प्रचार होना संभव। ज्ञान के बिना तो चारित्र लाया ही नहीं जा सकता, अज्ञानी क्या चारित्र पालन करेगा। हाँ, वो तो आवश्यक अनावश्यक को समझ, आवश्यक अनावश्यक का ज्ञान ज्ञान के बिना नहीं आता, और वही नहीं है तो संयम का कैसे पालन करेगा। प्रभु देव तो मा